नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, उसके एक खास अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय का नाम है समर्थ गुरु की प्राप्ति, एक अनुपम सुयोग। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक समर्थ गुरु का मिलना, उनका मार्गदर्शन मिलना, ये इतना खास क्यों माना जाता है और इसमें शिष्य की अपनी क्या भूमिका होती है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा विषय है ये। देखिए, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शिष्य गुरु को ढूंढता है ना।
हाँ, यही धारणा है।
पर पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि कई बार ना स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। जो समर्थ गुरु होते हैं वो खुद ही ऐसे शिष्य को खोज लेते हैं जिसमें वो मतलब पात्रता विकसित हो गई हो।
पात्रता यानी योग्यता।
हाँ, योग्यता, पात्रता। जैसे उदाहरण भी देते हैं वो कि रामकृष्ण परमहंस खुद चलकर विवेकानंद के पास गए थे, या फिर समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को खोजा था। पूज्य गुरुदेव जी ने तो अपना अनुभव भी बताया है कि कैसे एक सूक्ष्म शरीरधारी मार्गदर्शक, मतलब वो भौतिक शरीर में नहीं थे
जी,
वो स्वयं उनके पास आए जब गुरुदेव सिर्फ 15 साल के थे।
15 साल की उम्र में। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि गुरु का मिलना तो बस किस्मत की बात है, मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं।
नहीं, देखिए, पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार ना ये भाग्य से ज्यादा पात्रता का विषय है।
पात्रता।
हाँ, और ये जो पात्रता, ये कह लीजिए योग्यता है, ये कोई एक दो दिन में नहीं बनती। ये तो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं, आत्मा की पिछली यात्राओं के असर, और इस जीवन में जो हम लगातार कोशिश करते हैं उससे धीरे धीरे विकसित होती है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु मिलने में देर नहीं लगती, देर तो असल में लगती है वो पात्रता बनाने में।
अच्छा।
जब आपके अंदर संकल्प हो, धैर्य हो और सच्ची श्रद्धा हो, तो इन तीनों से मन की भूमि ऐसी तैयार होती है कि वो दिव्य मार्गदर्शन को ग्रहण कर सके।
हाँ, ये बात तो है। मतलब ये पात्रता ही शायद असली शिष्य होने का प्रमाण है। जैसे एकलव्य का उदाहरण दिमाग में आता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
उनकी श्रद्धा इतनी अटूट थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य भी उनके लिए असली गुरु जैसे ही कारगर हुए।
सही कहा। और कबीर जी का भी सोचिए, रामानंद जी ने तो उन्हें सीधे सीधे शिष्य नहीं बनाया था।
हाँ, वो गंगा घाट वाली घटना।
जी, पर कबीर जी ने उनके अनजाने में हुए चरण स्पर्श और मुंह से निकले राम नाम को ही गुरु मंत्र मान लिया। तो ये सब क्या है, ये श्रद्धा की ही तो शक्ति है।
श्रद्धा का बल है ये।
हाँ, गुरु की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वो पिता और शिक्षक दोनों का रोल निभाते हैं।
पिता और शिक्षक कैसे?
देखिए, पिता की तरह वो अपना तप और पुण्य, मतलब जो उन्होंने अपनी साधना और अच्छे कामों से आध्यात्मिक ऊर्जा जमा की है
जी,
उसका एक हिस्सा शिष्य की आत्मा की उन्नति के लिए देते हैं।
और शिक्षक की तरह ज्ञान देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं।
देखिए, दुनिया की जरूरतें तो माँ बाप पूरी कर देते हैं।
हाँ, वो तो है।
पर आत्मा का विकास, उसके लिए गुरु अपनी जमा की हुई आध्यात्मिक शक्ति शिष्य में डालते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, गुरु बिन होइ न ज्ञान।
सही बात है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता कि बहुत से लोग तो जीवन भर गुरु की तलाश में भटकते रहते हैं पर उन्हें मिलते नहीं, ऐसा क्यों होता है?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और पूज्य गुरुदेव ने इसे बहुत साफ तौर पर समझाया है। देखिए, कोई भी गुरु अपनी जो इतनी मुश्किल से तप करके कमाई हुई आध्यात्मिक संपत्ति है,
हाँ,
उसे किसी ऐसे वैसे मतलब अयोग्य या गलत नियत वाले व्यक्ति पर क्यों खर्च करेंगे? वो पहले परखते हैं शिष्य की नियत क्या है, वो कितना सच्चा है, उसका मकसद क्या है, ये सब देखते हैं।
अच्छा, परीक्षा होती है एक तरह से।
हाँ बिल्कुल। और जो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते उन्हें या तो सच्चे गुरु मिलते ही नहीं, या फिर वो अक्सर ढोंगियों के चक्कर में फंस जाते हैं। पूज्य गुरुदेव तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते थे कि उन्हें बिना ढूंढे ही घर बैठे ही हिमालय की एक दिव्य सत्ता का मार्गदर्शन मिल गया।
और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये पात्रता उनमें पहले से थी जो उन्होंने कई जन्मों में कमाई थी।
जी हाँ,
पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में अपने तीन पिछले जन्मों का जिक्र भी किया है, संत कबीर के रूप में, समर्थ रामदास के रूप में और रामकृष्ण परमहंस के रूप में।
हाँ, किया है।
तो ये दिखाता है कि आत्मा की ये जो यात्रा है और गुरु का मार्गदर्शन है, ये लगातार चलता रहता है।
बिल्कुल। और उन जन्मों में भी उनके वही गुरु, मतलब वही दिव्य सत्ता सूक्ष्म रूप में उनकी मदद करती रही, उन्हें रास्ता दिखाती रही, सफलता दिलाती रही। इन्हीं अनुभवों से उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि इस जीवन में उन्होंने खुद को पूरी तरह से उस गुरु सत्ता को सौंप दिया,
समर्पित कर दिया।
समर्पण। समर्पण का मतलब ही यही है कि अपनी इच्छा, अपना अहंकार सब गुरु की इच्छा में मिला देना। जैसे मान लीजिए लकड़ी आग में मिलती है तो खुद आग बन जाती है। या जैसे हनुमान जी ने खुद को पूरी तरह श्री राम के चरणों में डाल दिया था, वो भाव है।
पूज्य गुरुदेव को जब उनके गुरु ने पहली बार मार्गदर्शन दिया था तो दो खास बातें कही थी जहाँ तक मुझे याद है।
जी, दो मुख्य बातें थी।
पहली तो ये कि दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह मत करना, अकेले ही हिम्मत से अपने लक्ष्य पर बढ़ते जाना।
सही।
और दूसरी?
और दूसरी थी कि तपस्या करो, मतलब आत्म अनुशासन और साधना से खुद को और पवित्र और शक्तिशाली बनाओ।
हाँ, और साथ में एक चेतावनी भी थी।
चेतावनी? क्या चेतावनी? ये थी कि इस साधना से जो शक्ति मिलेगी, जो सामर्थ्य आएगी, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए करना है, दूसरों की भलाई के लिए, अपने छोटे मोटे निजी स्वार्थों के लिए बिल्कुल नहीं।
अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है, शक्ति का सही उपयोग।
बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो यही है कि एक समर्थ गुरु का मिलना वो कोई अचानक होने वाली घटना या सिर्फ संयोग नहीं है। ये असल में शिष्य के द्वारा कई कई जन्मों में जो पात्रता विकसित की गई है, उसकी जो अटूट श्रद्धा है और उसका जो पूर्ण समर्पण है, उसी का फल है। जब शिष्य तैयार हो जाता है ना, तो गुरु खुद उसे ढूंढ लेते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं। पात्रता का विकास वही सबसे अहम है। वाकई अपने आप में एक बहुत गहरा चिंतन का विषय है।
और आज की इस चर्चा के बाद शायद श्रोताओं के मन में भी एक सवाल उठे जिस पर वो विचार कर सकते हैं कि क्या हम सिर्फ बाहर ही गुरु को खोज रहे हैं या उतनी ही ईमानदारी से अपने अंदर उस पात्रता को जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं जिसके तैयार होने पर मार्गदर्शन अपने आप मिल जाता है।
हाँ, ये प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है।